एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार और ग्रंथ सार में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास पर बात करने वाले हैं, विक्रम सेठ का असूटेबल बॉय।
जी, एक ऐसा उपन्यास जो आकार में विशाल है और अपने आप में एक पूरी दुनिया समेटे हुए है। 1993 में आया और आते ही छा गया।
बिल्कुल, और अंग्रेजी में लिखे सबसे लंबे एकल खंड उपन्यासों में से एक माना जाता है इसे। विक्रम सेठ के बारे में थोड़ा बताएं, उनका जन्म तो कलकत्ता में हुआ था।
हाँ, 1952 में, और उनकी शिक्षा भारत में भी हुई और बाहर भी, ऑक्सफोर्ड, स्टैनफोर्ड। उनकी लेखनी में ना एक अजीब सा संतुलन है।
कैसा संतुलन?
मतलब बौद्धिक गहराई भी है और भावनाओं को छूने की क्षमता भी। वो रिसर्च बहुत करते हैं अपनी किताबों के लिए और असूटेबल बॉय इसका बेहतरीन उदाहरण है।
कहानी का समय है 1951-52 का भारत।
जी, आजादी के बस कुछ साल बाद देश अपना पहला आम चुनाव देख रहा है
और माहौल में काफी कुछ चल रहा है। जमींदारी उन्मूलन जैसे बड़े सामाजिक बदलाव, देश अपनी पहचान ढूंढ रहा है, एक धर्मनिरपेक्ष पहचान।
हाँ, और कहानी का केंद्र है ब्रह्मपुर, एक काल्पनिक शहर। वैसे कहानी कलकत्ता, दिल्ली, लुधियाना तक भी जाती है।
उपन्यास खुलता है एक बहुत ही कह सकते हैं आम भारतीय माँ के संकल्प से।
हाँ, श्रीमती रूपा मेहरा, वो अपनी छोटी बेटी लता से कहती हैं,
तुम्हारी शादी भी मैं अपनी पसंद के लड़के से ही करवाऊंगी।
बिल्कुल। और बस यहीं से शुरू हो जाती है 19 साल की लता के लिए एक सूटेबल बॉय यानी एक योग्य वर की तलाश।
और ये तलाश हमें चार परिवारों के जीवन में ले जाती है, मेहरा, कपूर, चैटर्जी और खान।
जी, उनके आपसी रिश्ते, उनकी जिंदगी के उतार चढ़ाव, सब कुछ इस तलाश के इर्द गिर्द घूमता है।
तो आज हम इसी उपन्यास के जो मुख्य पड़ाव हैं, पात्रों का जो सफर है, उनके मन की उलझने हैं और जो बड़े विषय हैं, उन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे।
जरूर। तो कहानी की शुरुआत होती है लता की बड़ी बहन सविता की शादी से।
सविता की शादी हो रही है प्राण कपूर से।
हाँ, प्राण कपूर जो ब्रह्मपुर यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी पढ़ाते हैं और राज्य के रेवेन्यू मिनिस्टर महेश कपूर के बड़े बेटे हैं।
और इसी शादी में श्रीमती रूपा मेहरा, जो कुछ समय पहले ही विधवा हुई हैं, लता को देखती हैं और तय कर लेती हैं कि भई अब इसकी बारी है।
हाँ, उनकी चिंता है कि लता का भविष्य सुरक्षित हो और उस जमाने के हिसाब से एक अच्छी शादी ही उसकी गारंटी थी।
लता कैसी है, मतलब कहानी की नायिका?
लता अंग्रेजी साहित्य की छात्रा है, समझदार है, थोड़ी चुप रहने वाली, शर्मीली सी, पर ऐसा नहीं है कि उसके अपने विचार नहीं है।
मतलब माँ की बात सुनती है पर मन में अपनी भी एक दुनिया है।
बिल्कुल, वो अपनी माँ का सम्मान करती है पर कहीं ना कहीं अपने फैसले खुद लेने की इच्छा भी रखती है। और श्रीमती मेहरा, वो एक टिपिकल माँ है,
प्यार करने वाली पर थोड़ी चिंता करने वाली, थोड़ा अधिकार जताने वाली भी।
जी हाँ, और उनकी नज़र में लता के लिए सबसे अच्छा यही है कि उसकी शादी एक अच्छे सेटल्ड लड़के से हो जाए।
और फिर लता की जिंदगी में एंट्री होती है कबीर दुर्रानी की।
हाँ, यूनिवर्सिटी में ही कबीर।
कैसा है कबीर?
कबीर इतिहास पढ़ रहा है, क्रिकेट टीम का स्टार है, दिखने में अच्छा है, समझदार है और लता से प्यार करता है।
तो एक तरह से पहला प्यार।
हाँ, पहला गहरा प्यार। वो यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में, कैंटीन में, ड्रामा रिहर्सल में छुप छुप कर मिलते हैं। ये लता के जीवन में रोमांस का पहला अध्याय है।
लेकिन ये रिश्ता इतना सीधा नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे बड़ी अड़चन है कबीर का धर्म, वो मुस्लिम है।
और ये 1950 के दशक का भारत है, बंटवारे के जख्म अभी हरे हैं।
जी, तो ये हिंदू मुस्लिम वाली बात रिश्ते को समाज की नज़र में वर्जित बना देती है।
यहीं लता पहली बार उस कश्मकश में पड़ती है, दिल की सुने या परिवार की, प्यार चुने या समाज की स्वीकृति।
हाँ, कबीर जो वैसे तो हर तरह से योग्य है पर धर्म के सामाजिक पैमाने पर अयोग्य हो जाता है, ये एक बड़ी विडंबना है।
दूसरी तरफ एक और कहानी भी तो है, मान कपूर की।
हाँ, मान कपूर, वो मंत्री महेश कपूर का छोटा बेटा है, प्राण का भाई।
और वो लता से बिल्कुल अलग है।
जमीन आसमान का फर्क। मान जिंदा दिल है, इम्पल्सिव है, थोड़ा लापरवाह किस्म का, जो मन में आता है करता है।
उसके पिता महेश कपूर वो तो बड़े आदर्शवादी नेता हैं, जमींदारी उन्मूलन बिल के लिए लड़ रहे हैं।
जी, वो एक बड़ा राजनीतिक संघर्ष था उस समय, बड़े जमींदारों से जमीन लेकर गरीबों में बांटने का प्रयास। जाहिर है विरोध भी बहुत था।
और मान इन सब चीजों से जैसे बेखबर है।
हाँ, वो अपनी धुन में है और उसकी जिंदगी में भूचाल आता है जब वो बेतार के नवाब साहब के घर होली मनाने जाता है।
वहां क्या होता है?
वहां उसकी नजर पड़ती है सईदा बाई फिरोजाबादी पर,
मशहूर गजल गायिका और तवायफ।
जी, और मान पहली ही नजर में उन पर लट्टू हो जाता है। ये आकर्षण फिर जुनून बन जाता है। मान अपना घर परिवार सब कुछ जैसे भूल सा जाता है।
कहाँ रहता है फिर वो?
ज्यादातर वक्त सईदा बाई के कोठे पर। वहां उर्दू सीखता है, उनकी महफिलों में शामिल होता है, उनके जीवन का हिस्सा बन जाता है। सईदा बाई की एक छोटी बहन है तस्नीम, एक तेज नौकरानी है बिब्बो। मान उन सब की जिंदगी में उलझता चला जाता है।
तो यहाँ दो तरह के वर्जित प्रेम चल रहे हैं, लता का और मान का।
हाँ, पर कितने अलग अंदाज में।
लता दबी हुई है, सामाजिक दबाव महसूस कर रही है, और मान?
मान बेपरवाह है, उसे जैसे नतीजों की कोई चिंता ही नहीं, वो बस अपने जुनून के पीछे भाग रहा है। ये रास्ता उसे बहुत कुछ सिखाएगा, पर शायद थोड़ी देर से।
और लता का क्या होता है जब कबीर वाले रिश्ते का पता चलता है?
अरे, घर में तो जैसे पहाड़ टूट पड़ता है। श्रीमती मेहरा बुरी तरह घबरा जाती हैं।
उन्हें लगता है बेटी हाथ से निकल गई।
हाँ बिल्कुल, और वो फौरन लता को कबीर से दूर कलकत्ता भेज देती हैं, उसके बड़े भाई अरुण के पास।
अरुण मेहरा सफल बिजनेसमैन पर थोड़ा अहंकारी।
हाँ, और अपनी पत्नी मीनाक्षी के साथ रहता है। मीनाक्षी चटर्जी परिवार से है।
तो कलकत्ता लता के लिए एक नया अनुभव होता होगा।
बिल्कुल, वहां वो मिलती है चटर्जी परिवार से। ये लोग बहुत सोफिस्टिकेटेड, वेस्टर्नाइज्ड, बौद्धिक किस्म के लोग हैं।
अरुण की पत्नी मीनाक्षी का परिवार।
जी, और यहीं लता की मुलाकात होती है अमित चटर्जी से, मीनाक्षी का भाई।
अमित चटर्जी कवि उपन्यासकार।
हाँ, बहुत बुद्धिमान, हाजिर जवाब, कला और साहित्य में डूबा हुआ। वो लता की सादगी और उसकी समझ से प्रभावित होता है
और उनमें दिलचस्पी लेने लगता है।
जी, उनके बीच बातें शुरू होती हैं। धीरे धीरे एक बौद्धिक स्तर का खिंचाव पैदा होता है। अमित उसे किताबों की, विचारों की एक नई दुनिया दिखाता है।
तो लता के सामने अब एक और विकल्प है, कबीर का जुनून भरा प्यार और अब अमित का ये बौद्धिक साथ।
हाँ, ये बिल्कुल अलग तरह का आकर्षण है। लेकिन लता को इसमें कुछ खटकता भी है।
क्या?
उसे लगता है अमित शायद लता नाम के विचार से ज्यादा प्यार करता है, असली लता से कम। उसमें थोड़ा आत्मकेंद्रित भाव है, वो जमीनी हकीकतों से थोड़ा दूर लगता है।
तो सवाल उठता है कि क्या सिर्फ विचारों का मिलना काफी है एक रिश्ते के लिए?
यही सवाल लता के मन में भी है, और उधर श्रीमती मेहरा की तलाश तो जारी है।
हाँ, वो तो लगी हुई है सूटेबल बॉय ढूंढने में।
तो परिवार के जानकारों के जरिए एक और नाम सामने आता है, हरेश खन्ना।
हरेश खन्ना, ये कौन है?
ये इंग्लैंड से ट्रेनिंग लेकर आया है, शू इंडस्ट्री में काम करता है। बहुत मेहनती, प्रैक्टिकल, एम्बिशियस लड़का है।
कबीर और अमित से एकदम अलग।
बिल्कुल, न उसमें कबीर वाला दीवानापन है, न अमित वाली इंटेलेक्चुअल चमक। सीधा साधा है, अपने काम को लेकर बहुत सीरियस है। शायद थोड़ा बोरिंग भी लगे पहली बार में,
पर उसमें कुछ और है।
हाँ, उसमें एक ईमानदारी है, एक स्थिरता का एहसास है। वो नए आजाद भारत की जो उद्यमी भावना थी, उसका प्रतीक है, अपनी मेहनत से आगे बढ़ने वाला। वो लता को पहले चिट्ठियां लिखता है, फिर मिलता भी है।
क्या बातें करता है वो?
अपने काम की, चमड़े की क्वालिटी की, फैक्ट्री मैनेजमेंट की। लता को पहले तो अजीब लगता है।
हाँ, कविताओं और इतिहास की बातों के बाद ये तो अलग ही होगा।
पर धीरे धीरे ना, उसकी वो सच्चाई, वो जमीन से जुड़ा होना लता को अच्छा लगने लगता है।
तो अब लता के सामने तीन रास्ते हैं, कबीर, अमित, हरेश।
हाँ, जुनून, बुद्धिमत्ता या स्थिरता, पहला प्यार, बौद्धिक साथी या व्यवहारिक पार्टनर।
ये सिर्फ पति चुनने का मामला नहीं रहा अब।
नहीं, ये अपने भविष्य की दिशा चुनने का फैसला है। लता को ये सोचना है कि उसे जिंदगी से और एक साथी से आखिर चाहिए क्या।
और एक तरफ लता की ये उलझन है, दूसरी तरफ देश में भी माहौल गर्म है। महेश कपूर और जमींदारी बिल का क्या हुआ?
उनका संघर्ष चल रहा है, सीधा टकराव है राजा ऑफ माराहा जैसे ताकतवर जमींदारों से।
पर उनकी दोस्ती नवाब साहब ऑफ बेतार से भी तो है, जो खुद जमींदार हैं।
जी, और यही बात बहुत खास है। ये दोस्ती दिखाती है कि उस दौर में निजी रिश्ते कैसे राजनीतिक और धार्मिक दीवारों से ऊपर थे। नवाब साहब जानते हैं कि कपूर का बिल उनकी जमीनों को नुकसान पहुंचा सकता है, फिर भी दोस्ती कायम है। ये उस वक्त की सेक्युलर उम्मीदों का प्रतीक है।
लेकिन ये उम्मीदें हमेशा पूरी नहीं होती। उपन्यास में सांप्रदायिक तनाव का भी जिक्र है।
हाँ, बहुत शिद्दत से, पुल मेला वाले सीन में।
पुल मेला?
गंगा किनारे एक बहुत बड़ा मेला लगता है। वहां हिंदू मुस्लिम समुदायों के बीच तनाव भड़कता है, कुछ लोग इसे हवा देते हैं और फिर
दंगा और भगदड़।
हाँ, बहुत भयानक, कई लोग मारे जाते हैं। मान कपूर और उसका दोस्त फिरोज, जो नवाब साहब का बेटा है, वहीं फंस जाते हैं।
मान वहां कुछ बहादुरी भी दिखाता है शायद।
जी हाँ, वो कई लोगों की जान बचाता है, उसका एक हीरो वाला रूप सामने आता है। लेकिन यह घटना समाज पर बहुत गहरे निशान छोड़ती है। ये दिखाती है कि नया देश कितना नाजुक है, सांप्रदायिक हिंसा का खतरा कितना बड़ा है।
कहानी अब जैसे अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रही है और मान कपूर फिर से सेंटर स्टेज पर है।
हाँ, लेकिन इस बार बहुत ही दुखद तरीके से।
क्या होता है?
एक रात मान नशे में है, गुस्से में है और एक भयानक गलतफहमी का शिकार हो जाता है।
गलतफहमी?
उसे लगता है कि सईदा बाई के मामले में उसके जिगरी दोस्त फिरोज ने उसे धोखा दिया है। असल में उसका गुस्सा किसी और पर होता है जिसने उसे उकसाया था, पर वो हमला कर देता है फिरोज पर, चाकू से।
अपने दोस्त पर?
हाँ, जानलेवा हमला।
ओह, इसके नतीजे तो बहुत बुरे हुए होंगे।
बहुत ज्यादा। फिरोज की जान मुश्किल से बचती है, मान गिरफ्तार हो जाता है, हत्या के प्रयास का आरोप लगता है।
और परिवारों पर क्या असर पड़ता है? कपूर और खान परिवार?
हाँ, सालों पुरानी दोस्ती में दरार आ जाती है। महेश कपूर का राजनीतिक करियर दांव पर लग जाता है, वो भी चुनाव से ठीक पहले। सब कुछ बिखर सा जाता है।
मान के लिए ये एक वेकअप कॉल जैसा होगा।
बिल्कुल। जेल में उसे पहली बार अपने किए का, अपनी लापरवाही का एहसास होता है। यहां से उसके अंदर बदलाव आना शुरू होता है। वो तय करता है कि वो हालात के आगे हारेगा नहीं। ये उसकी मैच्योरिटी की तरफ पहला कदम है।
इस सारे तनाव और उथल पुथल के बीच लता को अपना फैसला लेना है।
जी,
माँ का दबाव तो है ही, पर सेठ ये साफ करते हैं कि चुनना आखिरकार लता को ही है। वो तीनों विकल्पों को फिर से तौलती है।
कबीर, पहला प्यार एक खूबसूरत सपना पर शायद नामुमकिन,
अमित
बौद्धिक आकर्षण पर शायद जीवन की असलियत से थोड़ा दूर,
और हरीश,
सीधा सच्चा मेहनती जो शायद बड़े बड़े वादे न करें पर एक स्थिर इज्जतदार जिंदगी का भरोसा दे,
और लता चुनती है
हरेश खन्ना को।
ये चुनाव बहुत कुछ कहता है ना?
हाँ, ये सिर्फ प्रैक्टिकलिटी की जीत नहीं है, ये लता की अपनी समझ, उसकी मैच्योरिटी का सबूत है। वो जान जाती है कि उसे एक ऐसा साथी चाहिए जिसके साथ जिंदगी बनाई जा सके, जो भरोसेमंद हो।
जैसा किताब में है, वो घर, शहर या करियर नहीं चुन रही थी, वो एक आदमी चुन रही थी।
बिल्कुल, वो योग्यता को अपने लिए फिर से परिभाषित करती है।
उपन्यास का अंत कैसे होता है? सब कुछ ठीक हो जाता है?
अंत कई चीजों को समेटता है। लता और हरेश की शादी होती है सादगी से। कहानी एक शादी से शुरू हुई थी, एक शादी पर खत्म होती है। जीवन चलता रहता है।
और मान का क्या?
मान बरी हो जाता है, उसकी फिरोज से, परिवार से सुलह हो जाती है। वो धीरे धीरे जिम्मेदार बन रहा है।
देश में चुनाव के नतीजे आते हैं।
कांग्रेस जीतती है पर महेश कपूर जैसे लोग हार भी जाते हैं।
हाँ, जिंदगी आगे बढ़ रही है, परिवार भी, देश भी। तूफानों से गुजरे हैं, बदले हैं, पर आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम मुख्य विषयों को देखें, पहचान की तलाश, परंपरा बनाम आधुनिकता, लव मैरिज बनाम अरेंज्ड मैरिज, धर्म और समाज, परिवार और व्यक्ति।
हाँ, ये सारे धागे बहुत खूबसूरती से बुने गए इस उपन्यास में।
और विक्रम सेठ की लिखने की शैली,
वो कमाल की है। वो ऑम्निसिएंट नरेटर हैं, मतलब वो हमें हर पात्र के मन में झांकने देते हैं।
कहानी का फैलाव बहुत बड़ा है, 19 हिस्से हैं, हर हिस्से के शुरू में दोहे हैं जो कहानी का सार बताते हैं।
जी, और भाषा बहुत सहज है, साफ है। अंग्रेजी में लिखते हुए भी भारतीय जीवन के रंग, खाना, कपड़े, रिश्ते सब बहुत नेचुरली आ जाते हैं। चिट्ठियों का, कविताओं का, गजलों का इस्तेमाल कहानी को और गहरा बनाता है।
ये सिर्फ एक नॉवेल नहीं बल्कि उस दौर के भारत का एक दस्तावेज जैसा लगता है।
बिल्कुल, समाज, राजनीति, इंसान के रिश्ते सबकी एक झलक मिलती है।
तो आखिर में क्या लगता है, ये कहानी हमें क्या सिखाती है? आज भी क्यों पढ़ी जानी चाहिए?
शायद ये बताती है कि जिंदगी के अहम फैसले अक्सर दिल और दिमाग के बीच संतुलन साधने से होते हैं। शांत, स्थिर, साथ में, आपसी सम्मान में मिल जाती है।
और वो जो कश्मकश है, अपनी इच्छाएं और समाज की उम्मीदें, उसके बीच अपना रास्ता ढूंढना,
शायद यही चीज इसे हमेशा प्रासंगिक बनाए रखती है। ये तलाश कभी खत्म नहीं होती।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।